आज हम श्रीमद् भागवत के छठवें स्कंद से पहले अध्याय से 48वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अजामिल के जीवन का इतिहास। मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वम् मनसा भगवान जह। मनसा मन से, एव निस्संदेह पूरे अपने धाम में या परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में देवह यमराज देव जो सदैव तेजोमय तथा दीप्त रहे वो देवता कहलाते हैं। पूर्व रूपम विगत धार्मिक या अधार्मिक स्थिति, विपश्यति पूरी तरह देखते हैं, अनुमीमांसते ये विचार करते हैं, अपूर्वम भावी स्थिति, मनसा अपने मन से भगवान जो सर्वशक्तिमान है, अजह ब्रह्मा के समान। अनुवाद इस प्रकार से है, सब लोग ध्यान से सुनिए। सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान हैं, क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की तरह हरेक के मंदिर हृदय में स्थित होते हैं, वे मन के द्वारा जीव के पूर्व कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं और ये समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में कैसे कर्म करेगा। तात्पर्य, यमराज सामान्य जीव नहीं मानना होगा, यमराज को सामान्य जीव नहीं मानना होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के ही वे समान है। उन्हें प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम भगवान का पूर्ण सहयोग प्राप्त है, अतः वे परमात्मा की कृपा से जीव के भीतर से अंदर से उसके भूतकाल वर्तमान काल तथा भविष्य काल को देख सकते हैं। अनुमीमांसते इस शब्द का अर्थ है कि वे परमात्मा से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं। अनु का अर्थ है अनुसरण करते हुए। जीवों के अगले जीवनों के विषय में वास्तविक निर्णय परमात्मा द्वारा लिए जाते हैं और यमराज द्वारा उनको पूरा किया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल के जीवन का इतिहास। तो आपने अभी इस अध्याय में 47 श्लोक सुन लिए, उसमें अजामिल के विषय में चर्चा हो रही है और अभी इसके आगे ये जो वर्णन हो रहा है ये यमदूत विष्णुदूतों को बता रहे हैं, क्योंकि विष्णुदूत जब प्रकट होते हैं तो वो यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि आपके पास क्या ज्ञान है जिसके वजह से आप इस जीव को ले जाना चाहते हैं, क्या आपके पास ऐसा शास्त्रीय शास्त्रीय सबूत है या ठोस आपके पीछे विचारधारा है जिसके आधार पर आप इस जीव को ले जा रहे हो या ले जा सकते हो, तो उसके उपलक्ष्य में यमदूत जो है वो बहुत श्लोक, कम से कम 20 श्लोक में सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। तो ये पढ़कर मुझे ऐसा विचार आया कि यमदूतों को भी कितना ज्ञान प्राप्त है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यमदूतों को यमराज भागवत जी का संग प्राप्त है। और कौन लोग यमदूत बनते हैं? जो बहुत क्रूर होते हैं, जिनको लोगों को दंड देने में अच्छा लगता है, जैसे पुलिस होते हैं ना अपनी दुनिया में, उनको अपना कार्य बहुत अच्छा लगता है, किसी को पिटना, किसी को मारना, दंड देना, पकड़ना उनको। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति है, जो ऐसे लोग फिर यमदूत बन जाते हैं। लेकिन यमदूतों के लिए उनका बुरी प्रवृत्ति होने पर भी परम भागवत महाजन यमराज का संग प्राप्त होता है, तो बहुत ही गहरा वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है उनको। वो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त का संग उनको प्राप्त है। इसलिए यमराज यमदूतों का जो वर्णन आप पढ़ेंगे, इतना सुंदर वर्णन दिया उन्होंने शास्त्रीय, सब कुछ अपने स्वामी यमराज जी से उन्होंने सीखा है। और बहुत देर तक सिद्धांत व्यक्त करने के बाद में इस श्लोक में वो प्रत्यक्ष यमराज के विषय में बोल रहे हैं। तो आमतौर पे जब भी कोई पुलिस अधिकारी होता है, ये तो पुलिस कमिश्नर होता है या महा आयुक्त होता है, तो लोग सब डरते हैं उनको और चाहते हैं कभी इनका पाला ना पड़े हमसे, कभी हमारी उनकी मुलाकात ना हो, दूर से ही जय जय हो तो ठीक है। लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि जो वर्दी पहनकर पुलिस अधिकारी अपने ऑफिस में, चौकी में, पुलिस थाने में काम करता है, वो उसका ड्यूटी है, क्या कहते हैं उसको, जॉब डिस्क्रिप्शन, हाँ, उसका वो कार्य प्रणाली है। लेकिन वो व्यक्ति भी है, जब घर जाता है तो वो पुलिस का काम नहीं करता है, घर में वो किसी का माता, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है और किसी का मित्र है, और वो नहीं चाहता कि घर में भी वो वर्दी का भाव से चले। तो हर एक ऐसे कठोर काम करने वाले व्यक्तियों के दो पहलू होते हैं, एक होता है निजी पहलू और एक होता है उनका जो ऑफिशियल व्यावसायिक पहलू। यमराज का जो व्यावसायिक पहलू है भगवान के सेवा में, कार्य प्रणाली में, वो बहुत कठोर लगता है, आम जनता उनका मुंह भी देखना नहीं चाहती। लेकिन दूसरा उनका एक पहलू है, क्योंकि वो परम भगवान के भक्त हैं, भगवान के परम भक्त है वो, यहाँ तक कि साधारण भक्त नहीं है, वो महाजनों में गिने जाते हैं। हम लोग जब वैष्णव होम करते हैं ना, तो वैष्णव होम में बिना भूले यम भागवताय स्वाहा, सब लोग बोलिए ओम यम भागवताय स्वाहा, उनको प्रेम की आहुति अर्पण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके पद का, उनके अधिकार का सम्मान करते हैं। और जैसे इनका निजी जीवन है, इनका भी निजी जीवन है, और इनका निजी जीवन है भगवान की परम भक्ति। सभी देवता भगवान के परम भक्त नहीं होते। देवता लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है कि वो पृथ्वी पर जब थे तभी उन्होंने बहुत पुण्य कार्य किया, तो पुण्य कार्य की पूंजी इकट्ठा की तो उनको देवता लोक में प्रवेश मिलता है। फिर वो अपने पुण्यकाल, पुण्य कर्म का जो फल है उसको भोगते हैं, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, केवल इंद्रिय भोग की भावना से भोगते हैं। और ऐसे देवता लोक में भी नारद मुनि, अंगिरा मुनि और बहुत सारे मुनि यात्रा करते रहते हैं प्रचार करने के लिए, हाँ, प्रचार केवल पृथ्वी लोक पे नहीं होता है। और वो भोग में लिप्त जो देवताएं हैं उनको वो ज्ञान देते हैं, और सभी लोग उन ज्ञानों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ प्रमुख देवता होते हैं जो पूरी तरह से ज्ञान को ग्रहण करते हैं और सारा ये इंद्रिय भोग का चक्र छोड़कर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। उसमें से शिव जी महाराज हैं, गणेश जी हैं, देवी माता है, उसमें से यमराज हैं, जो भगवान की एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जो आम व्यक्ति पसंद भी नहीं करेगा। अभी जिस सेवा को करने से अगर जन सामान्य, आम जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, आपका मुंह देखना नहीं चाहेगी, आपके बारे में सोचना भी नहीं चाहेगी, कभी आपका संपर्क भी नहीं पड़े ऐसे सोचेगी, तो ऐसी सेवा कौन पसंद करेगा? अनपॉपुलर हाँ, ना पसंद हो जाएंगे हम। हम लोग हमेशा ऐसी सेवा करना चाहते हैं जिसमें हमको यश मिले, लोगों का संबंध मिले, लोगों की सराहना मिले, लोगों का यश क्या कहते हैं उसको, तारीफ मिले। इसलिए यमराज का पोजीशन बहुत स्पेशल है, वो भगवान की ऐसी सेवा कर रहे हैं जो कोई नहीं करना चाहता। और किसी ना किसी को तो वही कहना चाहिए, और ऐसी कठोर सेवा जो कोई नहीं करना चाहता वो भगवान ऐसे भक्त को देते हैं जिनको उनको पूरी श्रद्धा है, जो उनके विश्वास के हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है उनको ये सेवा कर पाएगा। कठोर सेवा है, मुश्किल सेवा है, नापसंद की सेवा है, उसमें कुछ रस निकलने वाला नहीं है। हाँ, हमेशा गुनेगारों से, पापियों से, पातकी लोगों से पाला पड़ने वाला है। कभी किसी कोई संत यमलोक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। जो पापी है, जो पाप के राशि से भरे हुए हैं, उनका ही दर्शन करना पड़ेगा, और करना वही पड़ेगा, हमेशा दंड देते रहना उनको। उनके राज्य में, उनके लोक में कोई भी ऐसा परम भक्त का संग प्राप्त नहीं होगा उनको। लेकिन फिर भी यमराज ऐसे एक अनोखे भक्त है भगवान के, जो भगवान की ये अनोखी सेवा करते हैं। हाँ, उनका पोजीशन कैसे वर्णन किया है सुखदेव जी यहाँ पर यमदूतों के मुख से वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? कि यमराज का पोजीशन ब्रह्मा जैसा ही है। ब्रह्मा इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक हैं, प्रथम जीव हैं, फर्स्ट सिटीजन, सर्वप्रथम नागरिक। उनको पूरा ज्ञान भगवान ने दिया है, पूरा निर्माण करने का इतनी बुद्धि दी है उनको, और उनके पुत्र है ये यमराज जी। लेकिन पद और अधिकार उनका ब्रह्मा जी जैसा है। यहां तक कहा गया कि परमात्मा के रूप में जो भगवान हमारे सबके हृदय में निवास करते हैं, उन सब वो परमात्मा का उनका डायरेक्ट संबंध है। और क्योंकि परमात्मा की विशेष कृपा और शक्ति आवेश उनके अंदर है, इसलिए उन्हें भी परमात्मा की तरह भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल का दर्शन होता है। किसी भी जीव को देखकर उसके पूरे भूतकाल को जान लेते हैं, वर्तमान को देख रहे हैं, और भविष्यकाल को भी समझ सकते हैं कि क्या करेगा वो। ये बहुत बड़ी शक्ति है, सामान्य शक्ति नहीं है, कुछ कुछ योगियों को प्राप्त हो जाती है, लेकिन इतनी विस्तार रूप में और गहराई में ये शक्ति उनको प्राप्त नहीं हो सकती जितनी यमराज को प्राप्त है। क्योंकि भगवान उनसे विशेष सेवा करवाना चाहते हैं, इसलिए उनको पूरा एम्पावरमेंट देते हैं, पूरी शक्ति आवेश देते हैं उनको। इसका मतलब इतना शक्ति होने पर भी यमराज का कभी भी वर्णन नहीं आया आज तक किसी भी पुराण में, वेद में, कि यमराज बड़े गर्विष्ठ हो गए, हाँ, माया में फंस गए और उन्होंने अपराध किया, फिर उनका पतन हुआ, फिर भगवान को आके दंड देना पड़ा उनको, तो डांटना पड़ा, ऐसा देखा आपने? कभी भी नहीं। इतनी कठोर सेवा कर रहे हैं, इतनी मुश्किल सेवा कर रहे हैं, और इतनी शक्ति भगवान ने उनको देके रखी है, फिर भी उनका कभी गर्व नहीं होता। और वो इतना सारा ज्ञान होने पर भी भगवान से परामर्श करके ही आगे का कार्य करते हैं। क्योंकि कैसा है ना, किसी को दंड देना है, हाँ, अगर किसी को चार माला पहनानी है तो पांचवी पहनाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, कोई परेशान नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर दो कोड़े लगाने हैं तो उसके बदले में तीन कोड़े लगेंगे तो जरूर आपको आप बौखलाएंगे, हाँ, चिल्लाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, दो के बदले में तीन क्यों। तो किसी को अगर दंड देना है तो वो परामर्श के साथ देते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली जीव को कष्ट दे रहे हैं, भले उनके पाप का कष्ट हो लेकिन दे रहे हैं उनके अपने हाथों से, इसलिए वो सोच समझकर सावधानी से देते हैं। जैसे मन में आया, जैसे उस दिन क्या मूड था, उस समय जिस प्रकार से निर्णय लिया उस प्रकार से दंड देते नहीं, वो पहले समझ लेते हैं फिर भगवान से चर्चा करते हैं। अनुमीमांसकृत, मीमांसा यानी चर्चा, परामर्श, रनु यानी उसका अनुकरण करना, उसका पालन करना, तंतोतंत जैसे है वैसे। उसके अंदर उनका विचारधारा नहीं है कि मुझे लगता है कि उसको दो दार दंड और देना चाहिए, ऐसा नहीं। जो भगवान की इच्छा है, फाइनल निर्देश भगवान का, उसी को वो अमल में लाते हैं, जो इनकी विशेष पर्सनैलिटी है। और जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं और साधना करते हैं, प्रयास करते हैं भगवान को समझने का, तो हमें ये भी दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति को हम कभी भी एक ही नज़र से देखना नहीं चाहिए। जैसे पुलिस को हम देखते हैं, जैसे और किसी को देखते हैं, हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के पहलू होते हैं, और अगर हम उस व्यक्ति को उस प्रकार से देखेंगे तो वो पहलू प्रकट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है तो आपको केवल वो दुष्टि दिखेगा, जैसे आपकी दृष्टि है वैसे आपको वो नजर आएगा। लेकिन अगर आपकी चेतना और दृष्टि अगर कृष्ण भावना भावित है, मतलब ओपन है, विस्तार पूर्वक आपका मन है, ब्रॉड माइंडेड है आप, तो आपको स्थिति जैसे है वैसे दिखाई पड़ेगी और उस व्यक्ति के अलग अलग पहलू भी आपको दिखाई पड़ेंगे। सो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि कोई व्यक्ति केवल बुरा ही नहीं होता या केवल अच्छा ही नहीं होता, उसमें हर प्रकार की प्रवृत्ति होती है। और खास करके बुरे चीज हमको दिखाई पड़ रही है फिर भी हमको ये धारणा रखनी चाहिए कि क्योंकि वो भगवान का अंश है उसके अंदर अच्छे गुण भी होंगे ही होंगे। जब दो भक्त में झगड़ा होता है तो भक्ति सिद्धांत जी महाराज यही करते थे, उनको बिठा के इतना दोनों को एक दूसरे को देखते हुए इतनी बुराइयां नजर आ रही है कि बुराई के अलावा कुछ है ही नहीं, बस बखान ही किया जा रहा है बुराई का। तो भक्ति सिद्धांत जी महाराज कहते थे अभी बैठो आप दोनों झगड़ा करने वाले और इनके अंदर क्या अच्छे गुण है बता दो और आप बता दो इनके अंदर क्या अच्छे गुण है। फिर शुरुआत में बहुत हिचकिचाहट होती है कि अच्छे गुण दिखाई नहीं पड़ रहे क्या बोले, फिर कोशिश की जाती है फिर एक एक गुण प्राप्त निकलता है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि फिर अच्छे गुणों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जीव भगवान का अंश है और जो गुण भगवान के अंदर है उसके अंदर भी है, वे माया के वजह से ढके हुए हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यमराज जैसे व्यक्तित्व है समझना मुश्किल है उनको बहुत। जब तक हमारी चेतना स्वयं शुद्ध नहीं है, जब तक हमारा मन जो है विस्तार में नहीं हुआ है, ब्रॉड माइंडेड नहीं हुआ है, तब तक ये जो दिव्य पहलू हैं ऐसे व्यक्तित्व के वो नहीं समझ में आते। ये शंकर जी महाराज हमारे हाँ विध्वंसक हैं, वो तो विनाश करते हैं, तमोगुण को संभालते हैं, लेकिन निजी जीवन में बहुत ही कोमल, बहुत ही श्रेष्ठ भगवान के मधुर भक्त हैं वो। उनकी ब्रज की लीला आप देखेंगे तो आपको सब लगेगा ही नहीं कि ये विध्वंस करने वाले हैं, तांडव करके सब सृष्टि को नष्ट करने वाले हैं, लगेगा ही नहीं ऐसी लीला करते। इतने नम्र है, कभी भी अहम नहीं है किस प्रकार का, हर समय चेतना जो है भगवान के चरणों में लीन है। भगवान भी उनका गौरव करते हैं, वैष्णवाना नता शंभु यथा शंभु, स्वयं भगवान ने गौरव किया उनका। तो आज हम थोड़ा यमराज के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये ब्रह्मा जी सॉरी यमराज जी विदुर के रूप में आए थे, हाँ क्या भाव था उनका विदुर के रूप में आने के पहले? भगवान ने भी उनको कहा था कि आपको आना है जब मैं आऊंगा महाभारत लीला में, लेकिन उनका भाव क्या था कि उन्हें भी कुछ समय के लिए फुर्सत चाहिए थी कि भगवान की सेवा कर सके। जैसे होता ना वेकेशन, पुलिस अफसर भी वेकेशन करता है कभी, अपना दंड देने का काम से कभी कभी छुट्टी लेकर जाता है गाँव में अपने और बच्चों के साथ में खेलता है, उधर नदी में कूदता है, जो उसके दिल की बात है वो करता है। तो विदुर के रूप में हम यमराज जी का व्यक्तित्व समझ सकते हैं कि विदुर जी क्या थे, दासी पुत्र बने ना वो, मतलब क्या पोजीशन था उनको, कुछ नहीं, राज्य पर अधिकार नहीं, कुछ कहे तो सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो उनकी इच्छा है, जरूरी नहीं कि मैं कुछ कहूँ तो दुर्योधन सुनेगा ही, दुशासन सुनेगा ही, शकुनी सुनेगा ही, लेकिन फिर भी अपना एक एक तरह से राजपुत्र होने पर भी, निम्न स्थान होने पर भी, अपनी सेवा विरोधी परिणाम प्राप्त होने पर भी करते रहना, ये विदुर की व्यक्तित्व का एक खासियत है, विशेषता है। कितनी बार उनका अपमान किया गया, कई बार उनके संदेश को उपदेश को लोगों ने सुना, लेकिन कितनी बार दुर्योधन ने उनका अपमान किया, दुशासन ने अपमान किया, शकुनी ने किया, मूर्ख हो तुम, राजनिष्ठ नहीं हो, इस प्रकार की कई प्रकार की बातें की गई, अपमान करके भी उनको कभी निकाला गया, फिर भी विदुर जी ने कभी भी अपनी नम्रता को नहीं छोड़ा, जो उनको कहना था वो साफ दिल से वो हमेशा कहते रहे। तो विदुर जी का व्यक्तित्व यमराज जी का व्यक्तित्व है। यमराज जी का इस पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ? जैसे एक तो होता है लौकिक स्वरूप आगमन का, एक होता है अलौकिक स्वरूप। अलौकिक स्वरूप है कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए, ब्रह्मा जी की संतान, लेकिन पृथ्वी पर जब उनका जन्म होने का लीला हुआ तो सूर्यदेव का विवाह हुआ उनकी पत्नी से, और प्रथम संबंध जब हुआ तो सूर्यदेव की पत्नी थी उनके तेज से बहुत प्रभावित थी और कुछ डरी हुई भी थी। समझो कोई साधारण स्त्री अगर बहुत ही विशेष शक्तिशाली व्यक्ति के साथ, तेज वाले व्यक्ति के साथ, अधिकार वाले व्यक्ति के साथ, प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ विवाह करें, तो शुरू शुरू में डर तो लगता है ना कि भाई इतने बड़े महान व्यक्ति से मेरा विवाह हो रहा है, कैसे निभेगा हमारा। तो पहला उनका संबंध हुआ था तो डर डर के हुआ था, इतना तेज था सूर्यदेव के अंदर कि वो तेज को सहन करना भी एक चुनौती थी। तो सूर्यदेव के साथ संबंध हुआ, सूर्यदेव ने कहा डर डर के संबंध हुआ है तो इस संबंध से ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिससे दुनिया डरेगी, सब लोग जितने भी जीव हैं उनसे डरेंगे। तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा कि भाई ऐसे मैंने क्यों किया। अगली बार अपने मन को समझाया, तैयारी किया ठीक से, और जब संबंध हुआ तो कोई डर वगैरह नहीं था, सामान्य स्थिति में प्रेम से संबंध हुआ। तो सूर्यदेव ने कहा अभी सो संतान होगी, वो कन्या होगी, नदी रूप होगी, और इस कन्या रूपी नदी में जो स्नान करेगा वो आपके बड़े बेटे के भय से मुक्त हो जाएगा। और वो थी यमुना देवी, और उसके बाद में उनको तीसरे पुत्र भी हुए जो शनि देव हैं। तो इस तरह से यमराज जी का जन्म हुआ। तो यमराज जी अपना यमदंड जो है ना उनका, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी जीव यहाँ का यमदंड से मुकाबला नहीं कर सकता है। केवल दो ऐसे प्रसंग है उनके हाँ जो यमदंड उनका काम नहीं किया। एक प्रसंग था जब कंस ने दिग्विजय किया, गर्ग संहिता में कथा आती है, बहुत बड़ा भयंकर दिग्विजय किया। आप पढ़ते जाएंगे तो आप समझेंगे कि कितना महान शक्तिशाली कंस था, और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने एक मुक्के से मार डाला तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। कभी कभी भगवान की महिमा समझने के लिए जो राक्षसों को उन्होंने मारा उनका महिमा भी समझना जरूरी है। नहीं तो लगे कि क्या अभी खिलौना आया, एक मुक्का मारा खिलौना खत्म हो गया, ऐसा नहीं। तो बकासुर जो था उसको, वो जब वो उत्कल राक्षस था, हयग्रीव नाम के राक्षस का पुत्र था उत्कल, उसने 100 स्वर्गीय वर्ष देवताओं के राज्यों पर राज्य किया था। और ऐसा उन्मत्त होकर एक बार एक मुनि के आश्रम में आया, जाजली मुनि के आश्रम में आया, और उसने ऐसे ही अपने हाथ में एक मुरली थी उसकी, वो जलाशय था उसमें मछलियाँ थी, डाल के बैठा, मछली अंदर आई मुँह में डाल दिया, मछली अंदर आई मुँह में डाल दिया। तो जाजली मुनि बहुत नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे आश्रम में नहीं होता है, कोई किसी को हत्या नहीं करता है, बंद करो इस काम को। फिर भी उनके सामने भी एक मछली मुँह में डाली उसने। तो जाजली मुनि ने कहा बहुत मछली खाने का शौक है, जाओ बगुला बन जाओ। इतना सुंदर शरीर था, इतना पावरफुल रत्न माणिक पहन के आया था, अचानक बगुला बन गया। तो एकदम अहंकार उतर गया और साधु के हृदय में चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी। तो जब इस सही स्थिति में आया मन के, तो जाजली मुनि ने उनको उत्साह दिया कि ठीक है जाओ बगुला बन के रहोगे, लेकिन जब 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान जन्म लेंगे तो उसके हाथ से आपका, वो आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। तो ये बकासुर जब ब्रज में आया खदीर वन में, तो सारे देवता ने एक एक करके उस पर आक्रमण किया। पहले ब्रह्मा जी ने किया, उनका ब्रह्मदंड भी उस पर काम नहीं आया, केवल दो 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 योजन आगे चला गया फिर वापस आया। वो लंबा वर्णन है, कहने का तात्पर्य है कि यमराज आए फिर और यमदंड का प्रहार किया उसके ऊपर, लेकिन यमदंड टूट गया। बाकी बारी सारे देवताओं ने अपने अपने शस्त्र लेकर आक्रमण किया, कुछ नहीं टस से मस नहीं हुआ वो। और फिर भगवान उसके शरीर में थे, उनको भगवान को निगल लिया था उसने। भगवान सारे देवताओं ने प्रयास करने के बाद जब देवताओं को खदेड़ दिया बलदेव बकासुर ने, तो फिर भगवान उष्ण हुए, प्रसारित हुए, बड़े हुए, और वो भार फेंक दिया बकासुर ने भगवान को, फिर भगवान ने उसका वध किया। तो नारद मुनि बहुलाश्व को ये कथा बता रहे हैं। तो बहुलाश्व कहते हैं अरे दो प्रश्न है मुझे, मरने के बाद इसकी ज्योति जो है भगवान के शरीर में चली गई, और एक आश्चर्य होता है कि यमदंड ब्रह्मदंड त्रिशूल पशुपतास्त्र निहारिकास्त्र आग्नेयास्त्र वायव्यास्त्र कुछ का परिणाम नहीं हुआ, कारण क्या उसका? तो कहते हैं कि भगवान के हाथ से मरने का वरदान था उसको, इसलिए यमदंड भी टूट गया और यमदंड का परिणाम नहीं हुआ। और चूंकि वो ऋषि की कृपा प्राप्त कर चुका था इसलिए वो भगवान के शरीर में विलीन हो गया। तो ये एक प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग है कंस का, कि जब कंस ने दिग्विजय किया तो वो सभी लोगों को उसने हराया, सभी देवताओं को परास्त किया, जितने भी राक्षस हम पढ़ते हैं भागवत में वो सभी को परास्त करके अपने वश में नौकर बनाया उसने। फिर और वो नारद मुनि से पूछते हैं, अभी और किया क्या किया जाए, मेरे लिए कौन ऐसा है जो मेरे लिए युद्ध कर सकता है। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि आप यमराज से युद्ध करो। उनको भी इच्छा थी कि यमदंड, अगर मैं यमराज को परास्त कर दूं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, अजय अमर हो जाऊंगा। हर राक्षस को ये इच्छा होती है कि अमर हो जाऊं। हाँ, बहुत ज्ञान होता है, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि आत्मा अमर होती है, ये शरीर अमर नहीं होता है। उसको पृथ्वी पर अमरता को प्राप्त करना होता है। आत्मा तो अमर है, लेकिन उनको यहीं पर इसी शरीर में उसी अधिकार में अमर रहना होता है। तो फिर उसने यमलोक पर आक्रमण किया। इतना सुंदर वर्णन है कि बहुत घमासान युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सभी देवता भी कांप कांप कर उसको देख रहे थे। और यमराज बड़े हजारों सूर्य की तरह प्रकाशित अपने शस्त्र को लेकर वहां पर आए, और उसने एक स्थिति ऐसी हो गई, कंस ने भी बहुत घनघोर युद्ध किया। मेरे ख्याल से मैं आपको सब गलत बता रहा हूं, ये रावण की कथा है, कंस की कथा नहीं। रावण का जब आक्रमण हुआ यमराज के ऊपर, तो इतना भयंकर युद्ध हुआ, रावण ने सभी देवताओं को परास्त किया, और फिर नारद मुनि के आदेश से वो यमलोक गए। यमलोक यमराज को ललकारा, यमराज आए, पहले यमराज के दो जो प्रमुख होते हैं दंड देने वाले अधिकारी, नंबर टू दो व्यक्ति होते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने आक्रमण किया, उनको रावण ने परास्त कर दिया। और फिर उसके बाद यमराज आए अपने भैंसा के रथ पर बैठकर, और बहुत घनघोर युद्ध हुआ, बहुत देर तक चला युद्ध, लेकिन कोई परास्त होने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय यमराज ने अपना यमदंड उठाया और वो रावण के ऊपर आक्रमण करने वाले थे। उस समय ब्रह्मा जी गुप्त रूप में प्रकट हो गए, अदृश्य रूप में, और कान में आके कहा कि नहीं चलाना इसके ऊपर, क्योंकि इसका वध प्रभु रामचंद्र के हाथ से होना है। भगवान श्री हरि ने प्रभु रामचंद्र के रूप में अवतार लिया है और उनके हाथ से उसका वध होना है। ये बड़ी लंबी कहानी है जय विजय वाली। तो सामने वाले शत्रु को परास्त करने की पूरी शक्ति होने के बावजूद भी केवल भगवान की सेवा के रूप में भगवान का गौरव बना रहे, इसलिए वो रण से पीछे हट गए। एक तरह से रावण की दृष्टि से डर के भाग गए। रावण ने पूरे सृष्टि में ये ऐलान किया, यमराज भी जो मुझे देखकर भाग गए, त्रिलोक विजयी हूं मैं, यमराज भी मुझे देखकर भाग गए, यमराज भी मुझे भय से देखकर भय से कांपते हैं, ऐसा उसने अपना बखान शुरू किया। लेकिन बड़ी नम्रता से यमराज ने ब्रह्मा जी का सलाह मानते हुए, शत्रु पर विजय पाने का मौका होने पर भी, अवसर होने पर भी नम्रता से पीछा लिया, पीछा स्वीकार किया और अपने राज्य में चले गए। और विजय का डंका पिटाते हुए रावण अपने लंका में चला गया, और सारे विश्व में ऐसा ही बात फैल गई कि यमराज हार गए, रावण ने यमराज पर विजय प्राप्त किया। तो जब वो मारीच से बात करते ना, तो यही बातें करते वो कि मैं वायु को रोक सकता हूं, यमराज भी मेरे दास है, उसके यमदंड को रौंद कर मैं आ रहा हूं, और तुम मुझे उस मानव के विषय में बखान करके डरा रहे हो। देखो भ्रम कैसे होता है व्यक्ति को, हाँ, जब अहम होता है ना तो भ्रम होने की बहुत संभावना होती है। उसको इतना अहम था कि सत्य वो जान नहीं सका कि मुझसे बलदंड व्यक्ति खुद की इच्छा से भगवान के गौरव को संभालने के लिए ही रण से निकल गया है। तो ये यमराज की नम्रता का और एक उदाहरण है। और यमराज जो कार्य करते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं थैंकलेस टास्क, मतलब उस कार्य का कोई धन्यवाद नहीं कर सकता है, केवल भगवान ही समझ सकते हैं, बाकी कोई व्यक्ति कोई भी देवता उनका धन्यवाद नहीं कर सकते। क्योंकि देवताओं को भी अगर कुछ पुण्य का फल और कुछ दंड देना है तो वो भी उनके हाथ में, अगर कोई देवता अपराध करता है भी उनके ही कक्ष में आता है, दंड देने का काम उनके ही कक्ष में है। तो ऐसा अप्रिय काम करने के लिए जिसको धन्यवाद प्राप्त नहीं होता है, फिर भी वो भगवान की ओर देखते हुए उस कार्य को करते रहता है, वही सच्चा भक्त है। हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग जब सेवा करते हैं तो हम लोग को हमेशा उसके पीछे शाबाशी चाहिए, वाह वाह चाहिए, सराहना चाहिए, कोई कहना चाहिए वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, हाँ बहुत अच्छा क्लास दिया, बहुत अच्छी सेवा करते हो, वो हमारा टॉनिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको कभी किसी की सराहना मिलती नहीं है, फिर भी गुरु या भगवान की आज्ञा को सर आंखों पर रखकर वो अपना कार्य करते रहता है। कभी कभी उस कार्य करते हुए बहुत निंदा भी प्राप्त होती है, आप अप्रिय भी हो जाते हो, लगता है कि बस कर अभी सेवाएं नहीं करना है मुझे, और कुछ सेवा चेंज करना चाहता हूं मैं। क्योंकि हमारी आसक्ति किससे है कि वो सेवा करने से हमें कुछ तारीफ मिलनी चाहिए, कुछ अच्छा मीठा फल मिलना चाहिए, निंदा नहीं मिलनी चाहिए, लोगों से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा होती है। और वो बार 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 अगर लोगों की दुश्मनी होती जाती है और लोगों से झगड़ा ही होता है हमारे सेवा के अंदर, हमारा कार्य ऐसा है, जैसे हॉस्पिटल में वो होता है ना HR डिपार्टमेंट, लोगों की छुट्टी काटना, उनको मेमो देना, वो सारे काम करने पड़ते हैं, तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, जो विश्वास वाले लोग हैं उनको वहाँ बिठाया जाता है, क्योंकि वो सहन कर सके लोगों के शाप जो मिलते हैं उनको, और अपना कार्य करते रहें जो जरूरी है। वैसे इनका कार्य जो है वो थैंकलेस कहा गया है। आगे इनका इस अध्याय में तो आप सुनेंगे अभी आगे जाकर, उसका मैं मालूम नहीं बताऊंगा, यमदूत और यमराज का वर्णन, वो संवाद का वर्णन है। अभी यमदूत यमदूत बोल रहे हैं, उसके बाद अगले अध्याय में विष्णुदूत बोलना शुरू करेंगे और यमदूतों को कन्फ्यूज कर देंगे पूरा। हाँ, उनको लगता था कि अरे यमराज के आगे कोई है ही नहीं, वही परम स्वामी है सब चीज़ के, लेकिन पता चलता है कि उनके आगे भी कोई है, तो कन्फ्यूज होकर वो यमराज के पास जाते हैं। तो आमतौर पर ना वो कैसे होते हैं पॉलिटिशियन लोग, अपने जो अनुयायी हैं उनको बताते हैं मैं ही सुप्रीम हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, और जब कभी पता चलता है उनके अनुयायियों को नहीं वो सुप्रीम नहीं है, उनके ऊपर भी कोई अधिकारी है, तो फिर भी वो कहेंगे नहीं नहीं मैं ही हूँ, आप चिंता मत करना, मैं ही सब स्वामी हूँ। वो अपने पद को, लोगों के मन के अंदर जो पद बना हुआ है उनको कुछ खोना नहीं चाहते। और यमदूत जा रहे हैं यमराज के पास में और प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर भी कोई है क्या? यमराज कह सकते थे कोई नहीं है मैं ही हूँ, आप चिंता मत करना, जो मेरी आज्ञा है पालन करना, क्योंकि यमदूतों को कभी भी उनके आगे कौन है उनका दर्शन होने वाला नहीं है, उसके योग्य नहीं है वो। यमदूतों को कभी भी यमराज के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका दर्शन नहीं होने वाला है, फिर भी नम्रता है इसलिए यमराज उनको सही ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं यस मेरे ऊपर ब्रह्मा जी हैं, मेरे ऊपर भगवान विष्णु हैं, और जो विष्णु के दास होते हैं वहाँ आपको कहीं जाने का अधिकार नहीं है, जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, जहाँ विष्णु भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ विष्णु भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ उनके नाम का कीर्तन होता है, उसके आसपास दूर दूर तक आपको घूमने का अधिकार नहीं है। याद रखना कभी भी किसी वैष्णव के पास मत जाना, जो वैष्णव नहीं है तो भगवान का नाम नहीं लेता है, जहां पर भगवान का कीर्तन नहीं हो रहा है उसी जगह आप प्रवेश कर सकते, इसको नम्रता कहते हैं, और यह भगवान का परम भक्ति दिखा सकता है। बहुत मुझे इस बात से मैं इंप्रेस होता हूं हमेशा, कितना साहस है उनके अंदर सत्य को बताने का, क्योंकि जो सत्य के विषय में पूर्णता समर्पित है, यानी भगवान के चरणों में उनकी सेवा में पूर्णता समर्पित है, उन्हें अपने पद का अहम अधिकार का कोई गर्व नहीं होता है, कभी उससे आसक्त नहीं होते वो, उनकी आसक्ति केवल भगवान की सेवा से होती है, भगवान के भक्त की पूंजी केवल भगवान की सेवा है, वैष्णवों की सेवा है, और वो सेवा के बदले में सराहना मिले या निंदा मिले वो भगवान की भक्त की सेवा और भगवान की सेवा कभी छोड़ता नहीं है, और कभी सत्य कहने का समय आता है तो उसमें कभी वो हिचकिचाता भी नहीं है, क्योंकि उसका सारा जो शक्ति का स्रोत है, जो आनंद का अनुभव है, वो उसको सेवा से ही प्राप्त हो रहा है, उसको अलग सराहने की या किसी अपने अनुयायियों के सामने और बड़प्पन दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यमराज ने जो वर्णन किया है उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, यमराज के क्या कहते हैं उसको चेतना को समझने के लिए, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है। अल्टीमेटली हम भागवत क्यों पढ़ते हैं, हम लोग भागवत पढ़ते हैं क्योंकि भागवत में जितने व्यक्तित्व का वर्णन, चरित्र का वर्णन किया गया है, उन व्यक्तित्व का सार हमको ग्रहण करने के लिए भागवत कहा गया है। भागवत में चुना भी उन व्यक्तियों का है जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अमल भक्त हैं, इनके अंदर कोई दोष नहीं है, और उनके संबंध में जितने राक्षसों का वर्णन है उनको संबंध में किया गया है। प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा है तो उसमें हिरण्यकश्यप का वर्णन भी चल रहा है, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रधान नायक नहीं है उस कथा का, प्रहलाद जी नायक है उस कथा के। तो ये जो किरदार है प्रहलाद कुंती जैसे, जब भीष्मदेव जैसे पूरे भागवत में भरे हुए हैं, वैसे यमराज का किरदार, जब यमराज का वर्णन आएगा तो यमराज के वक्तव्य का जो सार है उनकी चेतना का, वो हमको ग्रहण करना चाहिए, तब हम भागवत ग्रहण कर किए ऐसा हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं। आगे मुझे याद आ रहा है कि जब जगन्नाथ भगवान प्रकट होने का समय आया था तो जगन्नाथ भगवान पहले नीलमाधव भगवान थे। हमारी जो सृष्टि है ना ब्रह्मांड, उसके 100 साल होते हैं, उसका गणित दिया गया है प्रभुपाद जी ने भागवत में, भगवद गीता में कई जगह पर दिया उसका, जो ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, और ब्रह्मा जी के 100 साल में दो विभाग होते हैं, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध, फर्स्ट 50 ईयर्स और दूसरे 50 साल। तो पहले परार्ध में, पहले 50 साल के काल में नील माधव जी भगवान के रूप में प्रकट थे नीलाचल में, आज जहां जगन्नाथपुरी है। और द्वितीय परार्ध में नीलाचल में से नील माधव जी अप्रकट हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर जगन्नाथ प्रकट हो जाते हैं। और द्वितीय परार्ध में अभी जगन्नाथ जी स्वामी हैं। तो हुआ ये कि ये जो विश्ववासु थे, वो जब ढूंढ रहे थे नील माधव कहाँ पर है, जब पहुंचे वहां पर तो वो देख रहे हैं कि एक कौवा आया, रोहिणी सरोवर में जल पीने गया, उसको जल से स्पर्श हुआ, तुरंत उसका 4 भुजा वाले विष्णु दूत में सारूप्य मुक्ति उसकी हुई, उसको गरुड़ जी ने अपने कंधे पर लिया और सीधे वैकुंठ ले गए उसको। अब ये दृष्टि के सामने नील माधव जी लक्ष्मी देवी खड़ी हैं, उनके सामने बहुत सुंदर कल्प वृक्ष है और रोहिणी कुंड है और उस पर यह लीला हो रही है। वहां पर ब्रह्मा जी पहले से ही आकर परेशान है। वो क्या परेशान क्यों है, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान भगवान ने दिया है और वो भगवान से प्रश्न करने आए हैं कि भगवान मैं इन जीवों की बहुत ही विकट अवस्था देखकर बहुत त्रस्त हूँ। जिन जीवों को निर्माण करने का कार्य आपने दिया है, जिस सृष्टि को निर्माण करने का कार्य आपने दिया है, उसको देखकर, उसकी अवस्थाओं को देखकर, इनकी चेतनाओं को देखकर, इनके कर्मों को देखकर, इनको आगे और अभी होने वाले कष्टों को देखकर मैं बहुत पीड़ित हूँ कि इसका उद्धार कैसे किया जाए। ऐसे वैष्णव होता ना, वो पर दुखु दुखी, वो चेतना से वो भगवान से सलाह करने आए हैं कि क्या करें इनके लिए। और उनके पीछे पीछे यमराज भी आए हैं और वो भी खड़े हैं वहां पर। और यमराज का कार्य क्या है, सबका भूत भविष्य वर्तमान देखना है, उसका गणित करके उसको दंड देना है। और जो कौवा जैसा जीव है, कौवे के योनि में आया हुआ, उसके पूर्व कर्म बहुत बुरे होते हैं, इसलिए वो इसलिए निचली योनि में जन्म लेता है। तो वो वहां पर दोनों देवता खड़े हैं, ब्रह्मा जी यमराज जी, यहाँ पर नील माधव जी लक्ष्मी जी, और देख रहे हैं कि कौवा जल को स्पर्श करते ही वैकुंठ लोक चला गया। तो यमराज बहुत कंफ्यूज हो गए। यमराज वहां पर लक्ष्मी देवी से प्रश्न करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसे पतित जीवों को भी ऐसे तत्क्षण मुक्ति मिल जाए तो हमारा कार्य क्या है, फिर हम तो छुट्टी हो जाएगी हमारी, जॉब भी चला जाएगा हमारा, हमें क्या करना है। और हम समझे कैसे कि ऐसे अगर महत पाप करने वाले जीव को ऐसा शरीर प्राप्त होने के बाद में ऐसे चुटकी भर में अगर मुक्ति मिल जाती है तो फिर यह सब सृष्टि का नियम, पाप पुण्य कर्म का फल, पुण्य का फल पाप का फल, नरक स्वर्ग पृथ्वी बीच का आगे का करने की जरूरत क्या है। तो लक्ष्मी देवी उनको बताती है कि आपका जो नियम है, जो आप बता रहे हो, जो हमने ही आपको दिया है वेदों के द्वारा, वो भौतिक जगत में लागू है, वो मेरे घर में लागू नहीं है, क्योंकि जगन्नाथपुरी हमारा घर है, ये हमारा निज धाम है। हाँ, ये मत समझना कि आपका जहां होता ना वो कार्य क्षेत्र, हाँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं उसको, मतलब कहाँ कहाँ आपका प्रभाव है और कहाँ आपका प्रभाव नहीं है, ये भी पता होना जरूरी है। हर भक्त को पता होना चाहिए कि मेरा अगर मैं कुछ कहूंगा तो कहाँ कहाँ तक सुना जाएगा और कहाँ नहीं सुना जाएगा, और कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, अच्छा होने पर भी, सत्य होने पर भी नहीं बोलना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लक्ष्मी देवी यमराज जी को उनका कार्य क्षेत्र की परिसीमा का वर्णन कर रहे हैं कि आपकी सीमा समाप्त कहाँ होती है। मत समझना कि आपकी जहाँ जहाँ सृष्टि आपको दिखाई पड़ रही वह सब आपका कार्य क्षेत्र है, नहीं, ये श्री पुरुषोत्तम शंख क्षेत्र है, ये हमारा निज धाम है, यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, यहाँ पर ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं है, यहाँ किसी देवता का कुछ अधिकार नहीं है, यहाँ पर केवल नील माधव जी के, परम भगवान हरि के ही इच्छा से कार्य होता है और उनकी इच्छा से जीव यहाँ जन्म लेता है और वो जन्म लेता है। लेकिन हम सब लोग, लक्ष्मी जी कह रही हैं, उनको चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखते हैं, विष्णु दूत के रूप में देखते हैं, वैकुंठवासियों के रूप में देखते हैं, मथुरा मंडल में, जगन्नाथपुरी में, मायापुर धाम में जितने भी जीव जन्म लेते हैं वो सब दिव्य लोग उनको चतुर्भुज के रूप में देखते हैं, मतलब वो जीवन मुक्ति है, केवल कुछ समय का डिफरेंस है बस। तो यमराज एकदम प्रभावित हो गए उससे, उनको भी बड़ा आनंद हुआ जानकर कि अरे मेरे कार्यक्षेत्र के आगे भी कोई क्षेत्र है जहां पर मेरा अधिकार नहीं है और वहां पर ऐसे दिव्य कार्य होते हैं और भगवान वहां निवास करते हैं। तो यमराज ने सोचा छुट्टी लेने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि तो बड़े बड़े व्यक्तियों को भी छुट्टी चाहिए ना अपने कार्य से पुनरुज्जीवी होने के लिए, रिहैबिलिटेट होने के लिए, अपने मन को पूरा शक्ति प्राप्त करने के लिए, थक गए हैं तो उसको आराम करने के लिए। तो यमराज तुरंत वहाँ बैठ जाते हैं, शंकर जी को स्थापन करते हैं, वो तुरंत वहाँ भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। देखिए एक भक्त का ये लक्षण है, हम लोग सब लोग काम करते हैं, हमारे पास सबको सेवा है, सब लोग काम करते हैं, कोई प्रशासन कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई प्रचार करने गया है, वो हमारा कार्य है, हम लोग उसको सेवा के रूप में करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेवा एक उस दिन के लिए कुछ समय के लिए अगर समाप्त होती है, आज से समाप्त हो गई, तो आपके मन में क्या विचार आता है? वो आपकी सही चेतना है, आपके रियल कॉन्शियसनेस वो है कि जैसे ही आप सेवा से फ्री हो गए तो आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। अगर वो सेवा भगवान की कर रहे हैं हम, लेकिन वो सेवा समाप्त होने पर भगवान का ही विचार आपके मन में आ रहा है, भगवान का ही चिंतन चल रहा है, भगवान का ही मुख से नाम निकल रहा है आपका, तो हम भक्त हैं। सेवा हमको भगवान की सेवा में रखी रही है, भगवान की चेतना में रखी रही है। आज अगर सेवा समाप्त होकर अभी सोने जा रहे हैं तो क्या विचार मन में आ रहे हैं? जो हमारा अंदर की मूल चेतना है, रियल आवर कॉन्शियसनेस, वही प्रकट होना है। जैसे ही यमराज को पता चला कि इस क्षेत्र में मेरी सेवा नहीं है, तो क्या करने बैठ गए? तुरंत भगवान का ध्यान करने बैठ गए। ये उनकी सही चेतना का प्रमाण है। जाकर सोने गए हो, समुद्र किनारे घूमने नहीं गए हो, जल विहार करने के लिए तुरंत बैठ गए वहां पर। और आज भी वो स्थान जो है वो बहुत ही मशहूर स्थान है जगन्नाथपुरी का, यमेश्वर तोता, यमेश्वर महादेव, वहां पर यमराज जी ने शंकर जी का ध्यान किया है और भगवान का भी ध्यान किया है। तो हमें भी देखना यही है कि हमें ये कृष्ण भावना को कल्टीवेट करना है, उसकी परवरिश करनी है, ऐसी चेतना कल्टीवेट करनी है कि दिन भर हमको सेवा में रत रहकर उनके ही ध्यान के लिए, उनके लिए प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है। लेकिन दिन भर इस चेतना से सेवा करना है कि सेवा समाप्त होते पर भी वो चेतना चलती रहेगी, और नींद में भी वो चेतना चलती रहेगी। और नींद में वो चेतना चल रही है उसका प्रमाण क्या है कि आप सुबह जब पहले आंख खोलेंगे, या आंख भी खोले नहीं है लेकिन जग गए हैं, तो भगवान का विचार मन में आना चाहिए, भगवान का नाम जप मन में तुरंत शुरू होना चाहिए। आपने अभी तक आंख और मुंह भी नहीं खोला है, केवल जग गए हम किसी आवाज से, तुरंत भगवान का ध्यान मन में आना चाहिए। एक इसका प्रमाण है कि रात भर भी आप भगवान की चेतना में थे। और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर 6 महीने भी आप अगर ये प्रयत्न पूर्वक प्रयास करेंगे कि मुझे दिन भर भगवान की चेतना में ही रहना है, सेवा में रहते हुए और सेवा से फ्री होने के बाद में, और मुझे नींद में भी भगवान की चेतना को अपनाना है, कम से कम इच्छा तो करनी चाहिए ना। नींद तो हमारे बस में नहीं, हमारे मन में कुछ भी सपने आते जो हम सोचते भी नहीं, कभी किसी का मर्डर नहीं किया हमने, लेकिन सपने में कभी लगता है कि मैं मर्डर कर रहा हूँ किसी की, और खुद सुबह आश्चर्य होता है कैसे हुआ। मैं तो किसी तितली को भी कष्ट देना नहीं चाहता और मेरे हाथ से आज किसी स्त्री का खून हो गया स्वप्न में, ऐसा हो सकता है। लेकिन स्वप्न में भी मैं भगवान का ही चिंतन करना चाहता हूँ, भगवान का ही स्वप्न देखना चाहता हूँ, भगवान के भक्तों का स्वप्न देखना चाहता हूँ, इतनी इच्छा तो कर सकते हैं ना कम से कम, और वो इच्छा के अनुरूप प्रयास तो कर सकते हैं। फिर भगवान आपको उनका स्वप्न देंगे, उनके भक्तों का स्वप्न देंगे या गुरु जी का स्वप्न देंगे, और स्वप्न में भी आपसे ही सेवा ही करवाएंगे, वो उनकी इच्छा है। लेकिन हम सब लोगों को 24/7 जब तक हमारी चेतना भगवत भावना भावित नहीं हो जाती है, तब तक हम भगवान के धाम में जा सकते नहीं है। यह ऑप्शन नहीं है कि जब तक मैं जागृत हूँ, हाँ जगा हुआ हूँ, तब तक मैं कृष्ण भावना हो जाऊँगा, नहीं। जगह रहने के बाद जितने घंटे सोते हैं, चाहे 6 घंटे हो, 7 घंटे हो, 8 घंटे हो कभी, उसमें भी भगवान की भावना की परवरिश होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए। और ये नामुमकिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और तब फिर हमारे हाथ से ऐसा कार्य होगा, जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा, समझो, तो क्या हम टीवी देखते हैं कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि गॉसिप करते हैं कि किसी की बुराई करते हैं, कोई मिल गया तो बैठ जाते हैं उसके साथ में गप्पे लड़ाने के लिए? ये हमारे चेतना की परीक्षा है और प्रूफ भी है वो, कि जैसे ही फ्री टाइम मिलता है हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप में बैठ जाते हैं, किसी बेफजूल की बातें करते रहते हैं, यहाँ वहाँ की गॉसिप जिसको कोई मतलब नहीं है वो करते हैं कि तुरंत हम माला उठाते हैं या किताब उठाते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, कोई मिलेगा तो उसको भगवान की बात करते हैं। ये हमारी चेतना की कसौटी है और इसको हमको प्रयासपूर्वक अपनाना चाहिए। श्री वृंदावन धाम हमें ऐसी चेतना को निर्माण करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, क्योंकि हम जैसे अवृत्त हैं पूर्ण श्री वृंदावन धाम की चेतना से, वृंदावन धाम के सपोर्ट से, आश्रय से, हाँ, यहाँ का हवा, पानी, भूमि, यहाँ की रज, यहाँ की चेतना, लहरें, ये सब हमें आवृत्त कर रही है। तो यहाँ पर एकदम अनुकूल वातावरण है। यहाँ पर अगर आपको जब ध्यानपूर्वक करना है, कृष्ण भावना भावित होकर सेवा करना है और फ्री वक्त में भी कृष्ण का ही ध्यान करते रहना है तो ये भूमि आपको सहायता करेगी। लेकिन हमको चाहना तो चाहिए ना कम से कम। और यहाँ पर भी आगे इंद्रिय भोग करने लगेंगे, यहाँ पर आके भी वही निंदा करने लगेंगे, यहाँ पर आके भी वही जो काम शहर में पाप का करते यहाँ पर करेंगे, तो फिर इसका लाखों गुना परिणाम हमारे पर होगा और चेतना निर्माण होने के बदले चेतना डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पूर्ण नष्ट हो जाएगी। तो यमराज के इस कार्य को देखकर हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि जैसे ही पता चला यहाँ पर मैं ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, नहीं रह सकता, तुरंत भगवान के भजन में बैठ गए। आइए सब लोग हम यमराज जी के इस व्यक्तित्व से प्रेरणा लें कि जैसे ही फारग हो गए, फ्री हो गए, तुरंत हमें भगवान की चेतना में अपने आप को लिप्त करना है, ताकि किसी प्रकार से हमारे अंदर माया प्रवेश न करे और हमें कोई गलत कार्य करने को प्रवृत्त न करे। ये मत समझना कि वृंदावन में माया से मुक्त हैं, उल्टी एक्चुअली वो विपरीत बात है। जितनी माया बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में नहीं है, उससे कई हजारों गुना माया यहाँ उपस्थित है। या तो कृष्ण है या तो माया है, हाँ, आप 50-50 नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ थोड़ा सा भोग भी कर लेंगे, थोड़ा कृष्ण भी देख लेंगे, वृंदावन धाम है उसका भी लाभ लेंगे, नहीं, यहाँ पर आप एक ही चुन सकते हैं और वो हर क्षण की परीक्षा है। जिस क्षण कृष्ण चुनेंगे उस समय माया देख दूर दूर हो जाएगी, और जिस क्षण आपको माया को पकड़ना जरूर नहीं है, जिस समय आप कृष्ण को छोड़ देंगे माया आपको तुरंत झपट लेगी। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भगवानचा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धोरे। जितना ये सत्य बाहर है उससे हजारों करोड़ों गुना अधिक ये सत्य इस भूमि में है। निकटस्थ माया तरे झपटिया धोरे, जितनी जल्दी बाहर पकड़ती है उससे कई गुना जल्दी यहाँ पर पकड़ लेती है। तो यहाँ पर कृष्ण भावना भावित होने का एक बड़ा चैलेंज है जो जितना शहर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जरा नजर हटी दुर्घटना घटी, हाँ, नजर कृष्ण के ऊपर से हटी तुरंत माया आपको पकड़ने वाली है, छोड़ने वाली नहीं। ये सत्य उधर भी है लेकिन ये सत्य यहाँ पर वृंदावन धाम होने की वजह से कई हजारों गुना तीव्रता से यहाँ प्रकट है वो सत्य। इसलिए हमको जागरूक रहना चाहिए। और अगर कृष्ण को पकड़ लिया हमने, उनके चरण पकड़ लिए, भक्तों के चरण पकड़ लिए, तो फिर वो हजारों लाखों गुना अधिक गति से हम कृष्ण की ओर जाएंगे, और एक क्षण भी छोड़ दिया उतनी ही तेज गति से नीचे उतरेंगे। बहुत इंटेंस तीव्र खेल है यहाँ पर, यहाँ का खेल जो है बहुत तीव्र है। हमको चुनना है किस जगह रहना है, किस दिशा में रहना है। और आखिरी मुझे यमराज की कहानी याद आ रही है, वो ये है कि जब पांडव वनवास में काम्यक वन में आए थे, यहाँ से उत्तर दिशा में राजस्थान में आता है, तो काम्यक वन में जब पांडव निवास कर रहे थे तो एक दिन कुंती देवी ने कहा कि जल ले आओ। तो धर्मराज, सॉरी, पहले सबसे छोटे भाई गए सहदेव जी, और एक कुंड के पास गए। वहाँ पर जैसे ही गए उनको आवाज़ आई, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर जल आप ले सकते हो, और ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे, मरे पड़ोगे यहाँ पर, हाँ, मर कर पड़ जाओगे। भाई वो क्षत्रिय का गर्व था, वो बोला कौन सुन रहा है, हम तो देवता को परास्त कर सकते हैं, हमारे सामने शस्त्र अस्त्र सामने कौन खड़ा रह सकता है। दुर्लक्ष किया, जल लिया, उधर ही मुर्दा होके गिर गए। बहुत देर तक नहीं आए, नकुल को भेजा, जाओ तुम देख के आओ। नकुल को भी वही स्थिति हो गई। फिर अर्जुन गए, अर्जुन को गांडीव का गर्व था, मेरे गांडीव के टणत्कार के सामने मैं देवताओं को परास्त कर आ गया हूँ ऑलरेडी। हाँ, शिव जी को भी टक्कर दिया उन्होंने, किसको किसको टक्कर नहीं दिया, सबके साथ युद्ध करके अपना बल को प्रदर्शित किया उसने। तो ये कौन हो सकता है, या तो ग्राम्य देवता हो सकती है, तो वन्य देवता हो सकती है, कि और कोई शक्ति हो सकती है, लेकिन जिनको जिनको मैंने परास्त किया है उतना तो व्यक्ति यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने भी दुर्लक्ष कर दिया। और गांडीवधारी महाधन धनुर्धारी चैंपियन योद्धा जो था वो भी वहां पर मुर्दा होकर गिर गया। फिर भीमसेन गदा लेकर आए। अभी भीमसेन का तो सब जानते हैं, वो तो हर समय पर कहते थे पटक दूं इसको, पटक दूं दुर्योधन को, हर समय वैसे चेतना में रहते थे, कभी भी उठा के पटक दूं। तो जब उनको आह्वान किया गया तो एकदम बहुत क्रोधित हो गए, वो बहुत दुर्लक्ष करके वो भी जल पिए तो वो भी गिर गए। युधिष्ठिर महाराज आए, कुंती ने कहा अरे चार भाई चले गए लौट के नहीं आए, क्या बात है, जाओ देख के आओ। युधिष्ठिर महाराज जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरे अभेद्य अजेय भाई जो हैं विश्व में इनको कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती है, ऐसा कोई वीर नहीं है जो इनको परास्त कर सकता है, और शरीर पर एक भी घाव नहीं है, ऐसी अवस्था में वो मृत पड़े हुए हैं। सोचो आप, चलो युद्ध हो गया, घाव लग रहा है, हाथ टूटा हुआ है, समझो यहाँ पर खून बह रहा है, सर अलग हो गया है, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भयंकर व्यक्ति के साथ युद्ध हुआ और वो हार गए युद्ध में, चलो क्षत्रिय युद्ध में हारते भी है मरते भी है, लेकिन बिना किसी घाव के छेद के, हाँ ऐसे लगता है ये जीवित ही है लेकिन मृत पड़े हुए हैं, मतलब ये शक्ति जो यहाँ पर, उनको भी आवाज़ सुनाई पड़े ना आते वक्त कि अगर जल लेना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। वो आवाज़ की गंभीरता में इतनी शक्ति थी, वो समझ गए कि ये आवाज़ कोई साधारण आवाज़ नहीं है, जो भीम जैसे अर्जुन जैसे नकुल सहदेव जैसे महायोद्धाओं को बिना किसी घाव के मृत कर सकते हैं। इसे कहते हैं नम्रता। नम्रता के लिए ज्ञान भी आवश्यक है, हा? वो अपने भाइयों को भी जानते हैं उनकी शक्ति क्या है, वो भाइयों की अवस्था को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं बुद्धि से कि ये कोई शक्ति जो है उनके परे है, तो नम्र होकर हाथ जोड़ा उन्होंने। अभी वो भी शक्तिशाली थे, ऐसा नहीं कि उनको शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति के साथ में नम्रता होना बहुत जरूरी है। विद्या विनय न संपन्न, हाँ जब विद्या का गौरव कब होता है, जब वो विनय के साथ में बैठता है तो विद्या का गौरव होता है। आपके पांडित्य का गौरव ज्ञान का गौरव तब होता है, तब मायना रखता है जब वो नम्रता के साथ हो। रावण भी बड़ा बड़ा ज्ञानी था, कंस भी बड़ा ज्ञानी था, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी बड़ा ज्ञानी थे, उनके भागवत में पूरे वर्णन दिया है सिद्धांत के कैसे वो प्रीचिंग कर रहे हैं अपने भावियों को, लेकिन वो ज्ञान किसी के काम का नहीं है जब तक उसमें नम्रता नहीं जुड़ती है। जब नम्रता जुड़ती है वो ज्ञान भी कीमती हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। तो हाथ जोड़कर भी प्रश्न उत्तर देने लगते हैं, एक एक प्रश्न की सावधानी से सामने वाली शक्ति की महानता को समझते हुए नम्रता से एक एक प्रश्न का समझ बूझ कर उत्तर देते हैं। ऐसे नहीं कि कितने प्रश्न पूछ रहे, अभी दो हो गया ना, अभी और कितने देना है, जितना पूछ रहे उतना सावधानी से संयम से उत्तर दे जा रहे हैं, इतना बढ़िया उत्तर देते हैं कि आखिर में प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं और आवाज प्रसन्न हो जाती है, कहते कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं। अभी आखिरी सवाल पूछते हैं आपको, तो वो पूछते हैं कि इस विश्व में अहनी अहनी भूतानी, इस विश्व में सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि, तो धर्मराज उत्तर देते हैं युधिष्ठिर महाराज कि सब लोग मर रहे हैं लेकिन जो जीवित है वो सोच रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे और अपने भविष्य की योजना बनाते रहते हैं, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ हम लोग सब लोग जाते हैं ना मैयत में और जाकर फिर ऐसी सिद्धांत वाली बातें करते हैं शमशान में खड़े रहकर, अरे क्या सब लोग ऐसे बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, क्या जीवन नश्वर है, बहुत जीवन में कोई अर्थ नहीं है, आज है कल नहीं है, देखो क्या अधिकार का मतलब है, क्या धन का मतलब है, क्या पद का मतलब है, क्या सुंदर का मतलब है, सब बेकार है, सब असत्य है, सब माया है। इतना विरक्त होकर आते हैं, स्नान करते ही वापस अपने काम पे लग जाते हैं, इसलिए उसको नाम दिया है स्मशान वैराग्य। एक होता है वैराग्य, एक होता है स्मशान वैराग्य, उसकी आयु बहुत कम होती है स्मशान वैराग्य की, हाँ पैदा भी जल्द बहुत जल्दी होता है और खत्म उसके पहले जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये बताते ही वो आवाज बहुत प्रसन्न हो गई, मतलब ध्वनि से प्रसन्नता व्यक्त की और तुरंत यमराज प्रकट हो गए, वो आवाज यमराज की थी, युधिष्ठिर के पिताजी हैं, प्रसन्न हो गए उनके उत्तर से और युधिष्ठिर से कहा क्या वर मांगते हो बताओ। वो कहते मेरे भाइयों को जीवित करो, तो उनको भाइयों को जीवित करते हैं फिर जल लेकर चले जाते हैं। इस तरह से यमराज ने पांडवों के वनवास में भी अपनी लीला में सहभाग दिया है, तो हम सब समझ सकते हैं कि ये व्यक्तित्व बहुत अद्वितीय है। आमतौर पर महाजनों की चर्चा कोई करता नहीं है, इसका कोई सीरीज नहीं होता है कि ये महाजनों के ऊपर अभी लेक्चर दिए जा रहे हैं 12 दिन, कोई प्रहलाद जी पर बोल रहा है, कोई स्वयंभू मनु पर बोल रहा है, कोई ब्रह्मा जी पर बोल रहा है, लेकिन हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल में हम लोग एक गर्भवती महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम करते हैं, गर्भ संस्कार उसको कहते हैं। तो उस कार्यक्रम में हमने ये महाजनों का सीरीज आरंभ किया है, उसमें गर्भवती स्त्री को उसके 9 महीने के गर्भवती काल में सारे 12 महाजनों का चरित्र सुनाते हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि आमतौर पे भागवत सप्ताह होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन महाजनों के चरित्र का वर्णन कई लाइन में नहीं होता है। तो उसमें यमराज जी का वर्णन आमतौर पर कभी आएगा ही नहीं। आप देखिए, कोई यमराज की चर्चा करने बैठेगा क्या? क्यों बैठेगा? इतनी सारी कथाएं हैं मधुर मधुर, तो यमराज कथा कौन सुनेगा? लेकिन उनकी कथा करे या ना करे, उससे उनका जो गौरव है वो कम नहीं होता, और करें उनकी कथा तो हमारा ही जीवन का उद्धार होता है, हमारी आत्मशुद्धि का भेद हमको प्राप्त होती है। तो आइए हम इस कम से कम अजामिल के चरित्र के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के यमराज के व्यक्तित्व पर चिंतन करें, यमराज के व्यक्तित्व के पहलुओं को समझें, और केवल उनको दंड देने वाले के रूप में मत समझें, वो आपको शुद्ध भक्ति भी दे सकते हैं। क्योंकि महाजनों का व्याख्या क्या है? महाजनों की व्याख्या यह है कि महाजन के माध्यम से एक संप्रदाय आरंभ होता है, उनको महाजन कहते हैं। महाजन जैसे प्रहलाद जी हैं, जनक महाराज हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा हैं, उनसे संप्रदाय आरंभ हो रहे हैं, शिव जी हैं। और वो संप्रदाय आरंभ मतलब क्या? संप्रदाय होता क्यों है? जीवों को तारने के लिए संप्रदाय होता है, उस संप्रदाय में जीवों को संलग्न किया जाता है और भक्ति का मंत्र दिया जाता है, भक्ति का बीज दिया जाता है, भक्ति का सार प्राप्त होता है संप्रदाय के माध्यम से। संप्रदाय के माध्यम से ही मंत्र को शक्ति प्राप्त होती है, संप्रदाय के विहीन मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो संप्रदाय आपके साधना को ऑथोराइज कर देता है और आपकी साधना को कृष्ण के चरणों तक पहुंचाता है, इससे संप्रदाय बहुत जरूरी है। और योग्य संप्रदाय में संलग्न होना एक प्रामाणिक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक वो कितना भी भक्ति और कितना भी व्रतस्थ हो, वैरागी हो, जब तक प्रामाणिक संप्रदाय से संलग्न ना हो, उसकी सारी साधना एक तरह से बेकार ही है। जब तक आपने बहुत सुंदर मोती जैसे अक्षर में, बहुत गुलाबी कागज में, बहुत रंग बिरंगी पेन से आपने बहुत सुंदर मोतियों के अक्षर में एक खत लिखा है, लेकिन जब तक आप पोस्ट बॉक्स में पोस्ट नहीं करते हैं, आजकल तो वो नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में उदाहरण देते थे हम लोग, जब तक सही पोस्ट बॉक्स में उसको पोस्ट नहीं करते हैं तो वहां पहुंचेगा नहीं वो जिसके लिए वो लिखा गया था। तो सारा लेखन जो है व्यर्थ है अगर लिखने के बाद में उसको सही जगह पर कनेक्ट नहीं किया गया। उसी प्रकार से हमारी सारी साधना वही रह जाएगी। अच्छा है, आपके पाप तो नहीं जमा हो रहे हैं, अच्छा है, शायद वो साधना का परिणाम पुण्य में हो जाएगा, लेकिन भक्ति में नहीं होगा जब तक संप्रदाय से वो नहीं जुड़ेगा। हमारे सारे भक्तिमय कार्य जो हम कर रहे हैं भक्ति में, जब तक संप्रदाय से जुड़कर नहीं कर रहे हैं, भक्तों के संग में नहीं कर रहे हैं, बोनोफाइड संप्रदाय में से नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे कार्य पुण्य कार्य में रूपांतरित हो सकते हैं और वो आपको स्वर्गलोक पहुंचा सकते हैं। जाना था गौलोक, पहुंच गए स्वर्ग, क्योंकि कनेक्शन नहीं है, ऑथोराइजेशन नहीं है। तो ऐसे संप्रदाय के अध्यक्ष, एक संप्रदाय के अध्यक्ष यमराज जी हैं। उनका संप्रदाय कलयुग में प्रचलित नहीं है, बाकी युगों में उनका संप्रदाय चलता है, और यमराज संप्रदाय के प्रमुख भक्त होने के नाते, आचार्य होने के नाते, सबको शुद्ध भक्ति का बीज दे सकते हैं। तो हम लोग दंड के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हमको उनको देखेंगे भक्ति की याचना के भाव में, तो आज उनका संप्रदाय न होते हुए भी यमराज आपको भक्ति की आशीर्वाद कृपा दे सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, लेकिन ना यमराज से दोस्ती करने के समय पर वो चापलूसी का काम नहीं करना कि भाई ये दंड से बचाएंगे अच्छा रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यमराज का सहारा स्वार्थ से मत लेना, यमराज का सहारा एक वैष्णव के रूप में लेना, तो फिर हम लोग सीधे गोलोक पहुंच जाएंगे। यमराज महाजन महाभागवत की।